فنا اتنی ہو جاؤں میں تیری ذات میں یا اللہ، فنا اتنی ہو جاؤں میں تیری ذات میں یا اللہ، جو مجھے دیکھ لے اسے تجھ سے محبت ہو جائے۔ پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام کو شروع کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر اور بہت 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 عید مبارک۔ میری طرف سے اور سحر اردو کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو تہے دل سے ہم آپ کو عید مبارک کہتے ہیں اور پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سے بھی مراد ہے حسن بھائی، ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم،
عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ انشاءاللہ ناظرین آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، کیمرہ قائم، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، یا عام طور سے جسے بقرعید کہا جاتا ہے،
بقرعید بالکل، قربانی والا۔
آج میرے خیال میں زیادہ لوگوں کے پاس فرصت بھی نہیں ہوگی ہم لوگ پروگرام کو دیکھنے کی، یا اس وقت نماز میں ہوں گے۔ اس وقت تہران میں 6:33 ہیں، تقریباً 1.5 گھنٹے میں یہاں نماز شروع ہونے والی ہے، تہران کی جو مرکزی عید کی نماز ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز، ہندوستان پاکستان میں اس وقت یا ہو رہی ہوگی نماز یا ہو چکی ہوگی، تو اس میں ہم لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ذبح کرتے وقت نہیں بلکہ دعا کرتے
نماز کے بعد جب دعا کریں گے اس میں ہمیں ضرور یاد رکھے گا، ضرور ضرور۔
تو اس میں کئی چیزیں ہم لوگوں نے، ویسے آج میں بھی دیکھ رہا ہوں اس وقت وہاں پہ ٹچ اسکرین پر آپ نے کافی چیزیں تیار کی ہم لوگوں کے لیے، بہت ہی مزیدار سی۔ لیکن جو چیز میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا وہ اس حوالے سے ہے کہ کل جو ہے دعائے عرفہ تھی۔ رباب مین کل میں گیا ہوا تھا، کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا اور بعد میں رات کو ٹی وی پہ بھی، کہ ایک بہت ہی خوبصورت ماحول فراہم کیا گیا تھا، اور اس میں نوجوان، یعنی آپ جائیے تو اس میں کیسا اندازہ ہوتا ہے، ایک جگہ نوجوان زیادہ ہیں، کالے سر زیادہ نظر آئیں گے۔ تو اس میں وہاں پر جا کے میں نے دیکھا کہ نوجوانوں نے بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیا تھا۔
یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپ کو دین کی طرف آنا ہے، ایک ہی بہت اچھی بات ہے کہ یہاں کے نوجوانوں میں اس بات کی احساس ہے، یا اس ان کے اندر اس بات کو اجاگر کیا جاتا ہے پہلے سے گھر کے اندر کہ آپ کو اس طرف آنا ہے، یا یہ دعائے عرفہ ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی جتنی دعائیں ہوتی ہیں ان کی شرکت یہاں پہ نوجوانوں کی بھرپور رہتی ہے۔
یقیناً اس میں یہ خود حج کی طرح ہے،
بالکل
حج میں کہا جاتا ہے کہ یہ جوانی کی عبادت ہے، یعنی جتنا آپ اندر سے اسٹیمنا آپ میں رہے گا، مضبوط آپ رہیں گے، اتنا ہی آسانی سے حج کے سارے مراحل جو ہیں طے کر سکتے ہیں، اور یہ جو حج کے مراحل ہوتے ہیں کوئی آسان نہیں ہے، خصوصاً بہرحال اس میں مجبوری بھی ہوتی ہے ہمارے پاس۔
لیکن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں، سخت مراحل شاید ہوں، ہم کہتے ہیں سخت ہو، لیکن جب آپ اس میں چلے جائیں وہ خدا کی محبت ہی ایسی ہے کہ وہ سخت مراحل
یقیناً ہے، لیکن دیکھیں وہاں پر جو یعنی جو اعمال رکھے گئے ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ بہرحال اگر آدمی اس کے تاریخی پس منظر اور مذہبی پس منظر دونوں دیکھے تو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ بعض لوگ چلیں، خدا نے بھی یہ سہولت رکھی ہے کہ آپ جا کے نائب لے لیں مختلف کاموں میں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم خود کر سکیں تو وہ اندرونی سکون رہتا ہے، جو چیز خدا نے بہت زیادہ تاکید کی ہے،
بہت ضروری ہے آپ خود کر سکیں۔ اور وہ آپ نے بات کی نوجوانی کی عبادت جو ہو تو اس کا تو مزہ ہی اور ہے کہتے ہیں۔ اور سر سید احمد خان صاحب نے بھی اس میں ایک شعر لکھا تھا کہ گزرا وقت کبھی ہاتھ واپس نہیں آتا، جو ایک بڑا خوبصورت شعر تھا اسی حوالے سے۔ جی ناظرین، ایک کلک کی دوری پر ہم موجود ہیں آپ سے، صرف ایک کلک کی دوری۔ کمنٹ کیجئے عید کے متعلق، قربانی کے متعلق، کوئی بھی آپ کے نظرات ہوں ہمیں ضرور بتائیے۔ پھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے فون نمبرز اور ای میل ایڈریس، کہیں جائیے گا مت۔ آپ نے وہ تمام رستے دیکھ لیے جس سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اب چاہے وہ فون نمبر ہو، میسج ریکارڈر ہو، فیس بک کا آئی ڈی ہو، یا پھر ای میل ایڈریس ہو۔ تو ہم ان چیزوں کا، آپ کے جو کمنٹس ہیں ان کا بے صبری سے انتظار کریں، ضرور ضرور ہمیں کمنٹس کیجئے۔ عید کے متعلق کوئی خاص تصویر آپ کے پاس ہے، قربانی کی، کچھ بھی، تو آپ ہمیں ضرور بھیجے گا۔ جی حسن بھائی، میں ایک بات سوچی تھی، کہتے ہیں بکرا عید، یا چلے اس سے ہٹ جاتے ہیں، بکرا عید سے فی الحال قربانی اور گوشت سے ہٹ جاتے ہیں، قربانی جو انسان کی زندگی میں ہے اس سے بھی اس عید کو بہت جوڑا جاتا ہے۔
بالکل
جی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟
اس میں زیادہ تر جس چیز سے جوڑا جاتا ہے قربانی کو، کتنی بڑی قربانی ہماری، ہم نے اونٹ اس سال کٹوایا ہے، ہم نے اس سال भैंस करवाई है,
और वो
कटवाई है,
मुकाबला
एक दूसरे,
मुकाबला रहता है कि किसकी ज्यादा भैंस तगड़ी थी या
हाँ
किसकी।
खूबसूरत है, उसमें गलियों में सजाए जाते हैं
बिल्कुल
बकरे और ये सब, तो बहरहाल उसका अपना मंजर होता है,
जी,
लेकिन कुर्बानी देना
बिल्कुल जाती
सबसे,
कुर्बानी जो होती
यानी
है,
शायद कह सकते हैं जिन कुर्बानियों का कुरान में जिक्र है,
बिल्कुल
अगर उनकी
बिल्कुल
तरफ हम देखें
जी
तो उनका मकसद क्या था, हम लोगों को
बिल्कुल
पूरी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा,
बिल्कुल, ये बहुत अच्छी
और
बात है
यानी ये चीज़ हो जाए जहन में हम लोगों के आ जाएगी और पूरे कुछ ये मंजरकशी हो जाएगी कि
जी
किन चीज़ों के लिए क्या मेयार होना चाहिए कुर्बानी देने
जी
का और किन किन चीज़ों के लिए हम लोगों को
जी
कुर्बानी देनी
जी
चाहिए।
हसन साहब, हमें कहा जा रहा है कि हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं कॉलर, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, इंशाल्लाह मुबारक हो।
जी
बहुत
आपको
बहुत
वही
शुक्रिया चंद नूरुल्लाह एन हैदर साहब हैं इस वक्त
जी,
लाइन पर मौजूद, मैं
आपने
आपकी खिदमत
पहचान
में।
लिया
हाँ
जी
बिल्कुल, मैं बहुत ही बहरहाल यानी गिरविदा हूँ अपने नूरुल्लाह हैदर साहब का,
जी,
आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद उल अज़हा की मुनासिबत से।
मुबारक हो इंशाल्लाह आपको ईद।
अच्छा नूरुल्लाह हैदर साहब, मैं जो चीज़ पूछना चाहूँगा और यकीनन मेरे बहन का रुबाब बहन का भी
जी
यही सवाल है, वो कुर्बानी देने के हवाले से है।
बिल्कुल
इस वक्त लगे होंगे लोग कुर्बानी करने में, लेकिन क्या हम लोगों को बस इसी कुर्बानी करने पर यानी रुक जाना चाहिए या आगे किसी और चीज़ की भी कुर्बानी देनी चाहिए हम लोगों को?
जी कुर्बानी, असल में कुर्बानी से मुराद है क्या? कुर्बानी यानी अल्लाह से करीब होने का एक रास्ता है, कुर्बानी यानी परवरदिगार से कुर्बत, जो हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल है, कुर्बानी के असल में अरबी जमानी यही है, अल्लाह से करीब होना।
जी बिल्कुल,
जनाब इब्राहिम ने अपना जो असल तोहफा पेश किया, इम्तिहान दिया, और तमाम इम्तिहान में खास करके जनाब इस्माइल की कुर्बानी के मुतालिक जो जनाब इस्माइल की कुर्बानी को पेश किया, तो यानी कुर्बानी का मतलब अल्लाह से करीब होना। और सबसे अजीज तरीन जो चीज़ थी जनाब, अल्लाह ने उसको इब्राहिम से मांगा कि सबसे ज्यादा किसको चाहते हो? अपनी औलाद को, बेटे इस्माइल को, उसको मेरी राह में पेश करो। और जनाब इब्राहिम ने जब पेश कर दिया खुदा से करीब होने के लिए, तो अल्लाह ने इसको कबूल किया, इसे कहते हैं कुर्बानी। लिहाजा जो है इमाम चौथे इमाम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी कुर्बानी यानी अल्लाह से करीब होने के लिए ये है कि इंसान अपने नफ्स का की मुखालफत करे और नफ्स को खुदा से करीब होने के लिए कुर्बान कर दे।
जी बिल्कुल,
सबसे बड़ी कुर्बानी ये है
यकीनन। एक चीज़ जो मैं
लिहाजा
पूछना चाहूँगा मौलाना साहब वो ये है कि बहरहाल इतने यानी सारे मराहिल तय करते हैं हमारे हुज्जाज जाते हैं, इतना लंबा रास्ता तय करते हैं सऊदी अरब तक का, फिर वहाँ पे दो शहरों के बीच चलें, एक जो है ज़ियारत के लिए जाते हैं लेकिन दूसरा जो है वो जो ये जब से मुहरम होते हैं आखिर तक मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, खुदा क्या चाहता है हम लोगों से ये सब करवा के?
खुदा चाहता है कि सबसे बड़ी ईद यह है कि इंसान अपने आमाल की इसलाह करे, यानी परवरदिगार ने यहाँ पर चाहा है कि दुनिया को उस हिसाब से रखा जाए जो उसका हक है, उसके ऊपर ना देखा जाए, यानी हर वो चीज़ जो तुम्हारे लिए मुमकिन है तर्क करना सब छोड़ दो, सब कुछ तर्क करना। मोहरिम मतलब यह कि ये चीज़ें हराम हो गई, यानी वो चीज़ें दुनिया में थी सब आपके लिए हराम हो गई, सिर्फ और सिर्फ इखलास के साथ खुदा से करीब होना चाहता है, खुदा करना चाहता है।
जी
लिहाजा जो है इस आज मतलब खुशबू लगाना हराम है, बीवी भी मना है, फला चीज मना है, मुहरिम का मतलब ये जितनी चीजें दुनिया में आपके लिए थी सबको छोड़कर खुदा से करीब हो जाएं, हत्ता लिबास भी उतार दें, सब कुछ एक एक एहराम का एक वो कपड़ा लेकर और खुद अकेले अपने नफ्स को की मुखालफत करते हुए खुदा से करीब हो जाएं।
और आपका कोई सवाल है?
मेरा सवाल ये होगा कि कहते हैं कि इंसान अपने नफ्स पे पांव रख दे, यानी अपने नफ्स को मार दे या उस पर हावी हो जाए, तो ये कुर्बानी जो है ये आजकल की नौजवान नस्ल में हम किस तरह इसकी अहमियत को उजागर करें?
आज के जवान के लिए सबसे बड़ी जरूरत ये है कि वो अल्लाह ने दो चीजें इंसान को दी है, एक अक्ल दिया है, एक नफ्स दिया है
जी।
और परवरदिगार ने कहा है कामयाब इंसान वो है जिसकी अक्ल उसके नफ्स पर गालिब आ जाए,
सही
जी,
वही कामयाब होगा। लिहाजा जवान को सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो दीन अक्ल है
जी,
लिहाजा वो अपनी अक्ल को अपने नफ्स पर गालिब करे और उसके मुताबिक करे तो वो कामयाब होगा।
अच्छा मौलाना साहब बहरहाल इसमें यकीनन ये बहुत अच्छी बातें हैं और बहरहाल अमल करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पहला कदम ही उठाना बहुत मुश्किल होता है इसमें। एक तो हम लोगों के मुआशरे में, हमने एक दो दिन पहले भी ये सवाल पूछा था अपने जो माहिर थे उनसे, कि ज़्यादातर ये हो गया है कि हम कुर्बानी जब देते हैं तो बस इसका सोचते हैं, जैसा कि अभी इससे पहले भी हमने कहा कि बस हमारी कुर्बानी दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा बड़ी हो, लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों के पास हज़रत हाबील और काबिल का वाक़या है, तो
जी,
इस सिलसिले में हम लोगों को क्या करना चाहिए आपके ख्याल में?
कुर्बानी में कैफियत मुराद है, कमियत मुराद नहीं है। यानी इस्लाम ने कैफियत को मांगा है, किस तरह की कुर्बानी कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं।
जी
लिहाजा जो है कुरान ने कहा है कि अहसनो अमला, यानी कितना कैसा अमल अंजाम दे रहे इसको देखा जाए। लिहाजा हाबिल और काबिल कुर्बानी में कैफियत को अल्लाह ने देखा कि कौन कितनी खुलूस के साथ पेश कर रहा है।
जी
खुलूस के साथ मकदार की शर्त नहीं है, बल्कि खुलूस की और कैफियत की शर्त है इस्लाम में।
बिल्कुल,
जी
बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब।
जी, मैं भी बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुफीद और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रही मौलाना साहब। बहुत बहुत
शुक्रिया,
शुक्रिया आपने
इंशाल्लाह
प्रोग्राम के लिए
खुदा
वक्त
से हमारे
निकाला।
कबूल करें इंशाल्लाह।
जी जी
इंशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये ईद जो खुदा ने हम लोग के लिए ईद
इंशाल्लाह
मुकरर
आपको
बिल्कुल
मुबारक हो।
बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया।
बाज़ आयात हमारी बहन ये होती हैं कि उसमें हम लोग यकीनन ये होता है कि हज़रत
जी
अली अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है कि जिस दिन आदमी गुनाह न करे,
जी
लेकिन बाज़ आयात ऐसी होती हैं कि खुदा जब देखता है कि बहुत ज़्यादा आपने मेहनत कर ली
जी
तो आप इस लायक बन गए हैं कि आपको यकीनन कुछ ना कुछ सिला उसका दिया जाए,
बिल्कुल जी
और खुदा उस दिन को ईद मुकर्रर कर देता है।
बिल्कुल
अभी या बहरहाल नमाज हो रही होगी, उसमें
जी।
हम वही करेंगे।
जैसा आप वही देखें, रमज़ान के बाद मीठी ईद आती है, तो आपकी जो
बिल्कुल
रोज़ों का जो सिला है मीठी ईद में आ गया।
बिल्कुल
या आपकी जो हज में जो आपकी सख्तियाँ यानी जो थी, जो आपने जो हज के दौरान जैसा आपने बताया जो मराहिल तय किए, उसके बाद कुर्बानी की ईद आ गई, तो ये एक मीठा फल हम बोल सकते हैं कि हमें
यकीनन
मिलता है।
इसमें
जी
बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि अच्छा वो याद आ गया, वो मिठाई वो करवानी थी
अच्छा, आज
देखते हैं।
वैसे मैं
हाँ
भी कुछ मीठी मीठी खबरें लेके आई हूँ आपके
अच्छा,
लिए।
तो ये तो
अच्छा
बहुत ही अच्छा है, तो अगर
जी,
मिठाई नहीं भी मिली तो यकीनन कुछ
वैसे
मीठी
मिठाई नहीं,
खबरें
यहाँ पे
ज़रूर
गोश्त
हैं।
मिलना चाहिए हमको, बिल्कुल
गोश्त मिल नहीं,
कुर्बानी की
गोश्त
वाली ईद
तो
है
इतनी
ना।
जल्दी है कि आप 6:30 बज रहे हो, कौन उठा उठा के कहाँ किसको जगा के हम लोग गोश्त
सही
लेंगे ज़बरदस्ती,
बस सही,
वो
ठीक
इंशाल्लाह शाम तक पहुँच जाएंगे, आप
जी, ठीक
ज़्यादा
है,
परेशान मत
ओके
हो।
जी। नाज़रीन, ख्वाजा अमीरी साहब की आवाज़ में खूबसूरत सा तराना सुनते हैं और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने खूबसूरत से प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में, खूबसूरत सा तराना, खूबसूरत से मनाजिर। जी नाज़रीन, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा ये खूबसूरत सा तराना। वैसे मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज़ है आपके लिए, क्योंकि ईद का प्रोग्राम है तो कुछ तो खास होना ही चाहिए।
वैसे कोई
देख,
इतने छोटे छोटा भी नहीं है,
अच्छा छोटा
काफ़ी
नहीं है,
काफ़ी
हसन
बड़ा
भाई
है।
का बड़ा सरप्राइज़ है जी।
हाँ
तो
तो
अगर आप चाहें देखना तो हम आपको दिखाते हैं कि वो सरप्राइज़ क्या है। जी सरप्राइज़ तशरीफ़ ले आइए आप।
जी
जी
मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ
जी
आप सबकी खिदमत में, अपने प्यारे पे नाज़िम की खिदमत में भी सलाम अर्ज़
हमने
करता हूँ,
कहा ना
और
ज़्यादा छोटा कोई
बहुत
सरप्राइज़ नहीं
जी
है,
5 फुट 9 इंच का
सा
सरप्राइज़ है ये।
जी
बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ, ईद मुबारक आपको भी, ईद मुबारक
बहुत
हो।
बहुत मुबारक हो
और
आपको भी
जी मैं
इंशाल्लाह।
ऐसे में गया हुआ था मिठाइयाँ लेने के लिए,
अच्छा
लेकिन
कहाँ?
वो आ जाएंगी थोड़ी देर में, मेरे पीछे पीछे आ रही
ये
हैं वो
वो
थोड़ी देर
मिठाइयाँ जो कभी नहीं पहुँचेंगी।
इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर से हम इंतजार कर
नहीं,
रहे हैं,
ऐसे
बीच
में
में याद भी दिला दिया ना
ताज़ा
थोड़ा
ताज़ा
सा
मिठाई में जो ताज़ा बनती है वो उसके
उसमें
लेने के
बनना
चक्कर में
सही
था,
है।
तो वो थोड़ा सा देर हो गई, इस वजह से जो मैंने कहा मैं खुदा जो मिठाई जो है बाद में आ जाएगी।
जी
और आप
जी
लोग
बहुत
कैसे
ही
हैं?
अच्छा
ठीक
लगा
है।
शुक्र, आप
ऐसे
सुनाइए।
एक और जो यानी दूसरा साल हो रहा है, बहुत ही इस लिहाज से इत्तेफाक भी है, और यकीनन ये खुदा की तरफ से एक नेमत भी हम लोगों के
जी
लिए, और हम लोगों को वाकई शाकिर होना चाहिए कि इस साल भी बारिशों का सिलसिला बकरीद से ही उसका
जी
आगाज़
शुरू
हुआ।
बिल्कुल
पिछले साल भी यानी ईद उल अज़हा के दिन पहली बारिश जो तेहरान शहर में हुई थी, बाकी
सही,
जगहों पर तो हो रही है, लेकिन तेहरान शहर में जो हुई थी वो ईद उल अज़हा के दिन थी, और इस साल भी मैं अभी आ रहा था बाहर से तो
कल रात
भागता
को
हुआ
बारिश
आया।
हुई थी। जी
हाँ काफ़ी
जी जी
तेज़
कल
हुई,
रात
मैं
को,
सुबह को आ रहा था, मैं देख रहा था सड़कें पता नहीं क्यों भीगी हुई हैं, शायद
अच्छा
सड़कें धो ही गई हैं, पर हमने
नहीं
देखा
नहीं
नहीं
कल रात को
लाइटें ही
बारिश
धुली
हुई
हुई
थी।
हैं। मौसम जो है बड़ा खूबसूरत हुआ है, ठंड
जी
थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि वो जब बादल और बारिश होती है तो थोड़ा सा
अच्छा,
जो
आज मुझे ठंड वैसे ज़्यादा लग रही
मुझे भी
थी,
ज़्यादा
अच्छा
लगी,
ये
मुझे आज
इनका
ठंड
उल्टा
लग रही है, क्योंकि
सिस्टम
मैं
है।
दौड़ता दौड़ता आया हूँ, शायद
अच्छा
मुझे
वही
खासा
है,
उस वजह से जो है
वो
गर्मी लगी
मिठाइयों
हुई
के
है, थोड़ी
चक्कर
सी
में
जो
थे ना, तो आपको ठंड लगी नहीं।
बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन वैसे एक और जो जनरल नॉलेज की बात बताते हैं वो ये है कि बारिश आए तो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगर बारिश
बर्फ के बारे में को सुना
अच्छा
है,
बारिश के बारे में नहीं सुना,
बारिश
चलें
के बारे में
वो
सर्दी का
बर्फ के
जोर
बारे में
पहली दफा
होगी।
सुन रहा हूँ मैं
ठीक है, बर्फ के
ऐसी
बारे में ही होगा वो। बहरहाल और आप लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक।
जी,
ईद
हम लोग
का
आज बात कर रहे थे खुर्रम भाई
जी
इस बारे में कि ईद है
सही
तो हम कुर्बानी के बारे में बात करते हैं,
जी
ज़ाती कुर्बानी देना या नहीं, गाय बकरियों के अलावा,
जी
उस बारे में आपका क्या ख्याल है?
कुर्बानी खूब ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर हसन भाई कुर्बानी रुबाब बहन कुर्बानी देनी पड़ती है इंसान को बहुत सी जगहों पर। बहरहाल ये है जो मैं माहिर नफ्सियात की ज़रा बात ना करूँ तो बेहतर है,
उनको आना था
लेकिन
आज वैसे,
हाँ
वो
उनको आना
शायद
था जी,
रास्ते
मैं
में
उनकी जगह ले ली अभी, लेकिन ये है मैं जगह खाली कर दूंगा थोड़ी देर में।
जी
बहरहाल कुर्बानी जो है वो ज़िंदगी में इंसान को बहुत सी जगहों पर देनी पड़ती है, अपने
बिल्कुल
रिश्तेदारों के लिए कुछ ऐसे हालात पेश आ जाते हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है, तो अच्छी चीज़ है। बहरहाल
बहुत ही अच्छी
देनी
चीज़
चाहिए यानी आपकी नज़र में
जी
फिर। सही, आपने कभी दिए कभी ऐसा कुछ खास वाकया, कुछ चीज़ आपको याद हो?
बहुत से मौके आते हैं ज़िंदगी में कि इंसान जो है कभी अपनी कुछ कोई ख़ास चीज़, या मसलन कहीं आप मिसाल के तौर पे बस में बैठे हुए हैं, आप अपनी जगह छोड़ देते हैं किसी दूसरे के लिए, या इस तरह की छोटी मोटी,
यानी वाकई आप इसको कुर्बानी देना समझते हैं? बस में आपने जगह अपनी छोड़ दी,
कुर्बानी देना तो नहीं, लेकिन यह है कि आप जब रिलैक्स होकर अपनी सीट पे बैठे हुए हैं और आप देखते हैं कि जी आपको उठना है, तो वो एक थोड़ा सा जो है कुर्बानी की तरह नजर आती है मुझे।
वैसे कई क्लिप्स भी इस सिलसिले की थी, लेकिन उसमें वाकई इस लेवल की चीज को कुर्बानी नहीं कह सकते ही नहीं, तो चले आपने अपने आप वैसे एक लिहाज से है, हाँ आदमी अपने नफ्स पर काबू कर ले।
बिल्कुल वही बात आगे ना, जैसा मौलाना साहब ने भी कहा था कि मौलाना साहब ने भी कहा था, और कल मैं एक ईरानी प्रोग्राम था मैं देखती हूँ, उसमें भी यही कहा कि अपने नफ्स पर काबू पा लेना ही एक तरह की कुर्बानी है। जो चीज़ आपको अजीज हो, आप किसी और के लिए दे रहे हैं या वो जगह आप किसी और के लिए खाली कर रहे हैं, एक तरह से वो भी एक कुर्बानी हो गई। और बड़ी खूबसूरत बात की, बोला कि जो ईद का जो दिन है, ईद अजहा का जो दिन है, शैतान पे पांव रखने का दिन है, यानी आप इन्हें शैतान को आप रोनते हुए जा रहे हैं आगे, एक ऐसा दिन है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
देखिए इसमें एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, वो ये है कि हुज्जाज ने पिछले एक दो दिन में वहाँ पर गए रमी जमरात के लिए, यानी मुख्तलिफ साइज के जो शैतान हैं उनको कंकरियाँ मारने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तासी करते हुए जो उन्होंने शैतान की तरफ कंकरियाँ मारी थी जब वो जा रहे थे ज़िबा के लिए।
अच्छा।
और हजरत इस्माइल को जब फरमान मिला था कि ज़िबा कर दें, तो शैतान ने कई दफ़ा रुकावटें खड़ी की थी। तो खुदा के लिए जो काम होते हैं, यानी उसमें यकीनन शैतान रुकावटें पैदा करता है, तो उसमें हम लोगों को सोचना चाहिए, एक तो हम लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो खुदा के लिए है या नहीं है। अगर रुकावटें बीच में नहीं आ रही तो एक बार वाकई सोच लिया करें, ये तो एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बिलफर्ज रुकावटें अगर आ रही हैं तो किस तरह हमें काबू करना चाहिए। हो सकता है एक कंकर के जरिए हो सकता है वही कंकर अब मिसाल के तौर पर एक मजलूम के दिफा हो का दिफा हो, और या मसला इस सिलसिले में हो कि आप वाकई खुद पर अपनी यानी कोई बहुत ही ज्यादा ख्वाहिश है उसको आप कुचल रहे हैं, तब जाके आप उस मकसद को हासिल कर सकते।
बिल्कुल। और एक बहुत जो बड़ी निशानी है कि आप अगर सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो गए हैं, वो यही है कि बहुत सी रुकावटें आपके रास्ते में पेश आती हैं। एक जो चीज़ बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं पढ़ रहा था हसन, और वो ये थी कि ईद के बारे में लिखा हुआ था, एक आर्टिकल था उसमें मैं पढ़ रहा था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि जैसे एक घर में आपकी जो इजाफा चीज़ें होती हैं, किताबें हो गई, कपड़े हो गए, फाइलें होती हैं, उनको आप एक कमरे में या एक किसी अलमारी में डालते जाते हैं, रखते जाते हैं, एक वक्त आता है कि वो भर जाती है, उसके बाद वो वक्त होता है जब आपको जो है उसको साफ़ करना है, या जो घर का जो सरबराह है उसको, उनमें से जो काम की चीज़ें उसको रखना, जो फालतू चीज़ें उनको फेंक देना, जो चीज़ें जिन चीज़ों ने एक्स्ट्रा जो है वहाँ पर वजन किया हुआ उनको बाहर निकालना। बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ था, इंसान का एक इंसान का बदन जो है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसा ऐसा धूल पड़ती रहती है हमारे पर, कुछ बुरी आदत हमारे अंदर आती जाती हैं माशरे की तरफ से या कहीं भी इससे भी कहा जा सकता है। तो आज का दिन लिखा हुआ था कि आज का दिन वो दिन है कि आप अपने दिल के ऊपर से, अपने जहन के ऊपर से, अक्ल के ऊपर से वो जो धूल आ गई है उसको हटाएं, और जो बुरी आदत हैं उनको उनके बैठ के सोचें कि ये बुरी आदत हैं, कैसे मैं इनको छोड़ूं, क्यों मैंने इनको अपनाया, और उनको अलहदा करें। तो आज का वो दिन है कि हम अपने आप को, वो क्या फारसी में कहते हैं खूने तकूनी, घर को जो है घर की सेटिंग थोड़ी सी चेंज करें, और थोड़ा सा जो है अपने आप को अपने रूह को साफ करें।
नौरोज में एक प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पे खाने तकानी कहते हैं उसको, घर की सफाई को नौरोज से पहले जब, यानी बिल्कुल आप हर चीज को हिला देते हैं, सफाई कर देते हैं, उसमें होता है कि फसले दिल तिकानी, यानी दिल को साफ करना।
आप हजरात मुझे इजाजत दें, मुझे कहा जा रहा है बार बार कि हमारे साथ लाइन पे कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम
जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं?
मैं सैयद मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ
जी,
और मुझे बड़ी खुशी है आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हुए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ईद मुबारक कहना चाहूंगी।
जी जी, ईद मुबारक
जी।
मोहम्मद साहब, ईद कैसे गुजर रही है आपकी?
ईद सर अभी तो
उसमें तो काफी लंबी ईद होती है, यानी काफी दिन छुट्टी होती है,
3-4 दिन छुट्टी।
जी जी, इस दफा दुबई की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि 9 दिन की छुट्टी यहाँ पे।
माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा ये मोहम्मद अली साहब कहते हैं कि वो रमजान का महीना होता है कि उसमें सोने का भी सवाब मिलता है, लेकिन ईद का दिन तो सोने के लिए नहीं होता।
हाँ असल में यहाँ पे आपको पता ही है कि इस तरह से कुर्बानी जैसे हमारे पाकिस्तान में होती थी,
सही
कि मतलब उसके एहतमाम एक महीने पहले से ही शुरू हो जाता था, गाय और बकरी और बकरे ये सब मतलब इसकी गहमा गहमी रहती थी।
सही,
तो इस तरह से यहाँ पे तो इस तरह से होता नहीं है।
सही है,
एक तो यहाँ पे ज्यादातर ईद जो है वो सो के ही गुजरती है।
अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक चीज वैसे कल खबर आ रही थी पाकिस्तान से ही थी, कराची और दूसरे शहरों में यकीनन होगा वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया है बकरा खरीदो
फरोख्त।
अच्छा मोहम्मद अली साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं जहाँ पर एक अजीब किस्म का माहौल बन जाता है, और वो ये है कि किसने किसने जो है वो ज्यादा लंबे कद वाला बकरा लिया है, किसने जो है ज्यादा हट्टी कट्टी गाय है ऊंट, और इसे ये कंपटीशन होना चाहिए आपके ख्याल में?
देखें कुर्बानी का तो आप अगर कहते हैं तो भाई अल्लाह ताला जो है, हेलो
जी आवाज आ रही है,
आवाज आ रही है, हम लोग सुन रहे हैं।
जी कुर्बानी का अगर कहते हैं कि देखें तो अल्लाह ताला जो है भाई कुरान में जो है सूरह हज उसमें ये कहता है कि अल्लाह को ना तो कुर्बानी का गोश्त मिल पहुंचता है और ना खून, बल्कि उससे तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है।
ठीक है,
अब ये जो हम लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है कि मतलब ऊंचे कद वाला होना चाहिए, महंगा तरीन होना चाहिए और मोटा ताजा होना चाहिए, तो ये सारे तो हमारे अपने पैदा करते हैं। अगर
लेकिन अगली ईद दुआ करते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ हों, बहुत खुश हों और बहुत अच्छी ईद आपकी गुजरे
इंशाल्लाह।
जी बहुत बहुत शुक्रिया,
बहुत
शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से बात करके, खुर्रम गद्देजी साहब को खास कर मैं
बहुत 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 शुक्रिया,
इतने अच्छे प्रोग्राम वो करते रहे,
बहुत
बड़ा खुश होते हैं।
मोहम्मद अली साहब मैं भी आपसे मुत्तफिक हूं, क्योंकि मुझे भी जब हम बात करते हैं खुर्रम से हमें बहुत खुशी होती है।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब
जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी।
खुर्रम भाई एक आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी।
क्या कुर्बानी?
क्योंकि हमें शर्ट आपकी पसंद आ गई है, वो बाद में वो हमें दे दीजिएगा,
वो प्रोग्राम के बाद आप इस बारे में बात कर लीजिएगा। फिलहाल तो हमें कहा जा रहा है
याद आ जाए वरना इससे पहले ही मुकर जाए बाद में।
अच्छा यहीं पे बात आ रही है,
अब आपने फिर कहीं जाना होगा?
जी हमें फिर कहीं जाना है।
यानी आपको ये डायरेक्टर साहब को पसंद आ
गया,
इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं हम आजकल,
हमें जाना है खूबसूरत सा वीडियो क्लिप देखना और फिर अपनी नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने खूबसूरत से इस प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। जी नाज़रीन आज आपके लिए कुछ ख़ास और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खबर लेके आई हूँ, कुछ इस तरह से कि जब 130 साल पहले लोग हज पर जाते थे तो किस तरह जाते थे और क्या मुश्किलात का उनको सामना होता था, लेकिन फिर भी वो हज पर ज़रूर जाते थे। ये पुरानी तस्वीर है खाने काबा की, बहुत खूबसूरत यानी 130 साल पुरानी तस्वीर है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर
है। मैं एक चीज है रुबाब बहन के, ये भी आपने बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई, बहुत ही पुरानी लग रही है। इसमें यह है कि उस दौर में ज्यादा वहाँ पे उतना मजमा भी नहीं हुआ करता था, तो आसानी से लोगों का हज होता था। एक हम लोगों के जानने वाले थे, खुदा रहमत कर इंतकाल हो गया एक दो साल पहले, वो बताते हैं कि वो बस से गए थे, यानी तेहरान में रहते थे, तेहरान या कुम में उनकी इकामत थी, वो बस से गए थे वहाँ तक।
यहाँ पे एक मैं बात बोलना चाहूंगी, बात इंसान की लगन की है, इंसान की चाह की है, जितनी चाह हो जैसी भी आप जो भी रास्ते में मुश्किलात आए तो वो तय करता हुआ पहुंच ही जाता है मेरे ख्याल से।
ये लगन की बात आपने निकाल ली, तो लगन की बात यहाँ पर भी है कि जो लोग ज़ियारात के लिए जाते हैं, इराक जाते हैं, सूरिया जाते हैं, तो अभी मसलन जैसे कि आप लोगों को पता है हालात जो इराक के वो उस तरह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो यहाँ से काफिलों पे काफिले ईरान से
बेखौफ होकर जाते हैं।
तस्वीर अभी दिखा रही हूं, तस्वीर
और मैं पहले बताते चलूं, ये हसन भाई की मदद से हमने ये तैयार किया है, हसन भाई की मदद से,
हमारी मदद भी नहीं थी
जी। ये तस्वीर आप देखें, लोग ऊंटों पे किस तरह इन्होंने बांधा हुआ है और इस तरह ये जा रहे हैं, बहुत सख्त था, कहते हैं महीना महीना लोग जो थे यानी कहीं माह वो रस्ते में होते थे, सहरा से दरिया से होते हुए वो खाने काबा तक पहुंचे थे, मदीना तक पहुंचे थे, अपनी जियारत करते थे।
तो नाज़रीन वैसे अब इन ऊंटों को देख के मुझे एहसास हो रहा है कि बस से जाना फिर भी आसान था, लेकिन ऊंटों पे जाना
के जरिए आप हिसाब लगाएंगे। और इसमें एक और चीज़ है रुबा बहन और खुर्रम, यानी जो उससे कहा जाता है हज से जाने से पहले, यानी जो मुख्तलिफ चीज़ें इबादत में तो नहीं कह सकते लेकिन कहा जाता है कि मुस्तहब हैं, वो ये है कि आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, एक तो जो यानी कह सकते हैं कि जाके माफ़ी मांगे अगर आपने उनके हक में कोई ज़्यादती की है वो अपनी जगह पर, लेकिन कहा जाता है जाते वक्त रो के मिलें। अब इसका मैं समझता हूँ कि यकीनन ये है कि आदमी खुदा के पास जा रहा है, ये भी एक बहरहाल खुदा के पास जाना ही हुआ यकीनन, लेकिन इसमें यह था कि उस दौर में आप हिसाब लगाइए, मिसाल के तौर पर कोई हिंदुस्तान से या पाकिस्तान का जो एरिया था वहाँ से निकला है हज के लिए ज़मीनी रास्ते से या क्या कहते हैं पानी के जहाज़ से, तो कितने महीने लग जाते होंगे रास्ते में, पता नहीं वापस आए ना आए, एंटीबायोटिक ही अभी आप हिसाब लगाइए कि तकरीबन 50 साल पहले उसका इजाद हुई है,
और कहते हैं कि कितने लोगों का तो रास्ते में ही यानी इंतकाल हो जाता था जी, तो ये तो बहुत
हिसाब लगाइए कि बिल्कुल ये चीज
बस बात वही आ जाती है ना, चाह खुदा की चाह होनी चाहिए इसमें, आप कितना दिल से जा रहे हैं, ये और भी पुरानी तस्वीर आप देख रहे हैं नाजरीन, ये खाने काबा का अतराफ है,
अभी जाके देखें तो इस यही जो एरिया आप दिखा रही है यहाँ पर जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं और जो होटल्स वहां पर बन चुके हैं, वो देखने वाले हैं।
नजर वाली एलसीडी पे नई तस्वीरें हैं।
एक बात जो है मैं इजाफा करती चलूं, मैं दो दिन पहले इंटरनेट पे एक चीज पढ़ रही थी, लिखा था उसमें नाजरीन इस तरह के खाना काबा का जो एरिया है वो इस तरह से है कि कोई परिंदा उसके ऊपर से नहीं जाता और कोई भी जहाज उसका रूट वहां से नहीं होता, आप कुछ भी कर लीजिए जी, तो ये बहुत ही खूबसूरत अजीब सी बात है, बहुत ही अच्छी बात है जी। नाजरीन चलते हैं साथ देखते हैं एक खूबसूरत सा वीडियो क्लिप, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी। नाजीन आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं, वैसे मैं देख रही हूँ खोरम भाई फिर से गायब हो गए,
तो
आप तशरीफ ले आए,
मुझे जो है वो थोड़ी सी खुशबू आ गई थी कि मिठाई जो है वो पहुंच गई है,
थैंक यू सो मच, थैंक यू
जी।
नारियल वाली है ना ये
जी, नारियल वाली है, लेकिन ये है कि कुछ में थोड़ा सा वो जो है चॉकलेट का भी थोड़ा सा इसमें हिस्सा जी बिल्कुल, और काश के हमारे प्यारे प्यारे नाजरीन भी हमारे साथ होते तो हम ये जो है बड़े मजे मजे के जो नारियल के बिस्किट्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते
हैं। 7:04 हो रहे हैं, आप कौन सी दुकान आपने खुलवा के ये करवा ली,
देख लें बस फिर ये देखें, ये इसलिए तो मैं आज देर से
भाई का कमाल,
बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
भाई का कमाल है बिल्कुल जी। नाजरीन अभी मेरे ख्याल से हम लोग के पास जो है हमारे जो मोहतरम मेहमान है मेरे ख्याल से तशरीफ ला चुके हैं जी, तो फिर हमारे पास वक्त आ गया है खोरम भाई से खुदाफिसी करने का, आप सिर्फ मिठाई लाने के लाए थे,
ये मिठाई मैं लेके जाऊंगा वापस अपने,
नहीं होती है
अभी, नहीं मिठाई आप छोड़ के जाइए कमरे में, रुक जाइए बाहर,
ठीक है
एक आपके लिए हम छोड़ देंगे,
सही है तो आप लोग जा रहे हैं फिर वक्फा लेने
जी, जाते हैं एक खूबसूरत सा वक्फा लेते हैं नाजरीन और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते अपने मोहतरम मेहमान के साथ। आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं, हमारे मोहतरम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं और वो आज इस बारे में बात करेंगे जो हमारा हफ्ते का मौजू चल रहा था गुज़श्त या ईसार और ईद के हवाले से भी बहुत बहुत अहम मौजू है, उसका खुलासा करेंगे, वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते फौरन हसन भाई के पास जी। हसन
बहुत बहुत शुक्रिया रुबाब बहन, एक तो मैं बताता चलूँ कि जो हमने मौजू का मैंने हमने रेफरेंस दिया था आज से 2-3 दिन पहले कि हमने वो कहा था कि हमारे नाज़रीन का क्या ख्याल है उसके बारे में कि दूसरों की सही रहनुमाई करना, तो उसके बारे में भाई कमेंट तो कोई नहीं आए लेकिन लाइक अच्छे खासे हो गए, तो उसमें आबिद रज़ा साहब, सलमान हैदर साहब और अबू मजहर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहरहाल ज़हमत की और आके उसके ऊपर कम से कम लाइक तो कर दिए, और इस हवाले से इंशाल्लाह हम लोग मौजू फिर अपना चलाएंगे, लेकिन इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अली लवासानी साहब हम लोगों के साथ जो माहिर नफ्सियात हैं, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ।
सलाम
वालेकुम अस्सलाम नाज़रीन और आप लोगों की खिदमत में और ईद बकरीद की
बहुत बहुत शुक्रिया
मुबारक।
देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कुर्बानी देने के बारे में, एक तो कुर्बानी हम लोग जाते हैं बहरहाल मुख्तलिफ जो मंडियाँ होती हैं वहाँ पर कोई भेड़ बकरी खरीदी ये सब किया और उसको ज़िबह कर दिया, लेकिन एक कुर्बानी देना होता है नफ्स, यानी नफ्स का अपने या किसी अपने बहुत ही अच्छी चीज़ से गुजर जाना और ताकि उससे बेहतर कोई चीज़ हासिल कर लें, और यकीनन वो कुर्बानी देना ज़्यादा मौसर भी साबित हो सकता है नफ्स पे, हमारे अपने नफ्सियात पे, हमारे यानी समझिए कि जो अंदरूनी हम लोगों की सूरत हाल होती है हमेशा उस पर क्या ये चीज़ असर डालती है।
हम सर ज़मीन के तब्रिक गुफ्तीम आयाम बस ईद क़ुरबान रो
बकरीद की मुनासिबत से आप लोगों की खिदमत में मुबारकबाद पेश की, और इंसान को आगे बढ़ने के लिए रुश्त करने के लिए चार बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इल्म, फ़न, फ़लसफ़ा और दीन। दीन के बारे में जो एक्सपर्ट्स और माहिरीन हैं उनकी अपनी नज़र है, और उसका मकसद ये है कि यानी इंसान को अपने नफ्स से ईसार करना और
بهره برداری داره و استفاده میکنه.
انسان کبھی کبھی جو ہے نہ یہ کہ خالی وہ انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ فداکاری اور ایثار سے پورا معاشرہ فائدہ اٹھاتا ہے.
میتونه که خود روی جلوی آدم بیاد ازش گذشت بکنه. اینها به آدم اعتماد به نفس میده.
یعنی انسان ایثار اور فداکاری سے
بیشتر از او
اعتماد حاصل کرتا ہے، اعتماد به نفس حاصل کرتا ہے،
احساس اعتماد به نفس میگیره.
انسان کو خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے ایثار سے، اور انسان کو عزت نفس حاصل ہوتی ہے.
از طرف روانشناسا رابطه مستقیمی پیدا کردن بین
ماهر نفسیات کا خیال ہے کہ ایثار، فداکاری اور گزشت اور ذہنی اور معنوی سلامتی میں ایک رابطہ ہے.
دقیقا به این بستگی داره که ما نسبت به اون چه که در اختیار داریم بتونیم در فضای
انسانی جو ذہنی سلامتی ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہم کتنا فداکاری کر رہے ہیں، کتنا ایثار کر رہے ہیں، اور ایثار سے انسانیت کو ارتقا حاصل ہوتی ہے.
در مراسم ذبح کردن حضرت اسماعیل،
حضرت اسماعیل کی قربانی جو جناب ابراہیم کے توسط سے انجام ہوئی اس کے بارے میں
میتونن دیگران بابت این موضوع فکر کنن،
یعنی یہ ایسا موضوع ہے کہ دنیا کے لوگ ماہرین اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے رہتے ہیں.
اسیر افتاده بود این بود که روزانه 5 نفر رو میگرفتن برای مجازات بدنی،
جیسے کہ ایک اسیروں کے قافلے میں
خوب می
5 لوگ جو ہیں وہ قید ہو گئے تھے
مخفی می شدن
اور
آخرین ردیف ها
ان کو ایک ہال میں بند کر دیا گیا تھا.
در ردیف های اول ہمیشہ منتظر این بودند،
یہ 5 لوگ
بدنی رو
بجنگ، 5 لوگ ہمیشہ اس کے
ہفتہ ها گزشت
منتظر تھے کہ ان کو جو
اعتراضی نہیں ہوتا
جسمانی سزا ملنے والی ہے وہ معاف ہو جائے.
سالون قائم می شد، یک قدم اومد جلو تو خاطراتش میگه، میگه فقط من،
یعنی وہ اپنی یادیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں میرے اندر کچھ اس طرح کا احساس ہوا کہ مجھے بزرگی کا احساس ہوا، اور کیونکہ ہمیں ہمیشہ سزا دی جاتی تھی، ہمیں ایذا رسانی ایذائیں دی جاتی تھی، لیکن ایک دن بعد میں نے ایک قدم اور آگے بڑھا.
جنگ کے جو اسیر تھے ان کے حوالے سے
تحقیقات،
یہ جو تحقیقات ہیں وہ ایرانی قیدی جو عراق میں تھے ان کے سلسلے میں
بودن، جب هیچ وقت اعتراض نمی کردن.
میں تھوڑا ایک قدم آگے گیا تو ہم جو ہمیں اذیت دی جاتی تھی اس کے بارے میں ہم کبھی اعتراض نہیں کرتے تھے.
از نظر شخصیتی کامل تر نبودن، کامل شدن.
گاهی که شخصیتی شخصی لحاظ سے اور معنوی لحاظ سے ہم ایک قدم اور آگے بڑھے، اور
تلاش بکنیم از
ہم نے یہ کوشش کی
فرزندانمون فداکاری های کوچک و
یاد ہم اپنے بچوں اور اپنے فیملی والوں کو ایثار سکھائیں،
در جامعه حرکت میکنن بتونن به فداکاری و گذشت و عفو توجه بکنن.
یعنی ایثار اور فداکاری،
یہ مثال ویسے ہم لوگوں کے، یعنی واقعی بہت ہی اہم آپ نے مثال بھی دی اس سلسلے میں. ہمارے بزرگوں کے یہاں، اور خصوصاً اگر ہم لوگ بہت پہلے مت جائیں، لیکن مثال کو تو ایران کی، ایران اور عباسی حکومت کے بیچ جو جنگ تھی، یا اس سے قبل ہندوستان یا پاکستان کے آزادی کے سلسلے میں جو قربانیاں دی گئیں، جو نفس سے گزرے تاکہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک مشن کو آگے بڑھائیں، یہ وہ بہت ہی اہم اور بہت بڑی ہم لوگوں کے لیے مثال ہے، اور بہت ہم لوگوں کی ذمہ داری بھی اس سلسلے میں بڑھ جاتی ہے. بہت بہت شکریہ، چلتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں رباب بہن، اور اس کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہاں اوپر بھی ہم لوگوں کے کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں.
جی ناظرین، آپ کو حضرت خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں کہتے ہیں عید مبارک. امیدوار ہے کہ آپ کو مکہ معظمہ کے خوبصورت مناظر بھی پسند آئے ہوں گے، اور فوراً چلتے ہیں حسن بھائی کے پاس، وقت کو ضائع کیے بغیر.
بہت بہت شکریہ، مجھے بھی امید ہے کہ یہ عید ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوگی
انشاءاللہ.
ڈاکٹر صاحب، وقت ہم لوگوں کے پاس زیادہ نہیں ہے، ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ 7:20 پہ پروگرام ختم ہو جائے گا.
تو بنابراین ما یک جمع‌بندی کوتاهی بخوایم انجام بدیم،
اس بنا پر ہم ایک مختصر طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں، زندگی ایک ایسا مقابلہ ہے، ایک ایسا کمپٹیشن ہے کہ جس میں آگے بڑھا جا سکتا ہے ہمیشہ، اور اپنے بزرگوں سے ہم تجربہ حاصل کر سکتے ہیں. بزرگ ہمارے بزرگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں،
جهت مسیر اصلی باشه
که اگر هماری جو هم آگے بڑھ رہے ہیں وہ صحیح راستے پر ہو تو سب سے پہلے ہم خود اپنی مدد کر سکتے ہیں, اپنی مدد اور اسی طرح سے دوسروں کو تعلیم دے سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں. ہمارے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ہے, چاہے ہم جو ہے وہ استاد ہوں, کوئی ہم کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے ہوں, ہمیں ہر کام صحیح موقع پر اور صحیح کا انجام دینا چاہیے اور ایثار اور قربانی اور فداکاری کے ساتھ انجام دینا چاہیے. یعنی میں ہر جگہ جہاں پر بھی ہوں وہاں پر میں ایثار کر سکتا ہوں. ہمیں اتنی کوشش کرنی چاہیے اور اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے کہ دوسروں کے لیے وہ سبق آموز ہو اور دوسرے بھی ہم سے ایثار اور فداکاری کا سبق لیں. کبھی ہم ایک عمر کرنے کے بعد, ایک وقت کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ایثار اور قربانی جو ہے وہ کیا ہے, لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. اور مسلمان کے جو حج کے موقع پر ایثار اور قربانی کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم جیسے کہ وہاں کی جو معنوی فضا ہوتی ہے وہاں ہم ایک دوسرے کو اپنے اوپر ایثار سے کام لے سکتے ہیں, ان کو موقع دے سکتے ہیں اور ایثار اور ہم ہر جگہ ایثار سے کام لے سکتے ہیں. اور اس صبح زندگی کا جو پروگرام ہے اعلیٰ صبح, یہ بھی یہاں آنا اور یہاں پر پروگرام پیش کرنا بھی ایک ایثار ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں ناظرین سے بات چیت کے لیے ہمیں یہ موقع فراہم کیا گیا اور میں بہت خوش ہوں اور خوشحال ہوں کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں.
کیونکہ تار یہاں پہ لگا ہوا ہے تو اس لیے میں اٹھ کے مٹھائی آپ کو نہیں دے سکتا ہوں, لیکن آپ خود لے لیجئے گا ضرور. تو ناظرین بہت بہت عید مبارک ہو. قربانی کی بات ہوئی تو مجھے یاد آ گیا پھر سے کہ وہ جا کے شرٹ لینی ہے خرم سے, تو قربانی دینی پڑے گی,
خرم بھائی کو دینی ہی پڑے گی آج قربانی. جی حسن, میں ناظرین کی خدمت میں بتاتی چلوں. ناظرین ہمارے کل کے مہمان ہوں گے ڈاکٹر عثمان خالق صاحب. کھانے پینے کا دن ہے تو ڈاکٹر عثمان خالق صاحب کے ساتھ انشاءاللہ کھانے پینے کا مزیدار سا پروگرام کریں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا آج کا دن ہی نہیں, ہر دن آپ کی عید کی طرح گزرے, ہر دن بہت خوش و خرم آپ کا گزرے. ناظرین عید کا دن ہے تو اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بزرگوں سے ملنے ضرور جائیے گا. اگر کوئی روٹھا ہوا ہے تو اس کو ضرور منائیے گا. اگر دل میں کوئی کینہ بغض ہے اس کو صاف کر کے سب سے ملنے جائیے اور اپنے بزرگوں کا احترام رکھیے, چھوٹوں کو پیار دیجیے اور ان کی دعائیں لیجیے.
آخر میں ایک چیز بس میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ قربانی دیتے ہیں جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انہیں کا نام باقی رہ جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ آج کا بھی پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچا اور کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ. تھوڑا عید کا ماحول تو ہم لوگ باقی رکھیں.
بس اس دعا کے ساتھ ہم پروگرام کو ختم کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آج کے ہمارے جتنے بھی قدم اٹھیں, آج نہیں ہر قدم جو ہمارے اٹھیں وہ سب اس رزق حلال کی طرف اٹھیں, اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رزق حلال کما سکیں. مجھے حسن بھائی کو اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.